नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खेल खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना इस समय स्टूडियो में, और आज मेरे साथ इन तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ राहुल बैनर्जी। राहुल, स्वागत है आपका। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में कल से सुपर 8 मुकाबले खेले जाएंगे। कल पहले मैच में अमरीका का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के साथ। ओलंपिक और विश्व चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आज फिनलैंड के तुर्कू में पावो नुरेमी स्टेडियम में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में हिस्सा लेंगे। भारत दिसंबर 2025 में होने वाले जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। और शतरंज में भारत के शीर्ष रेटिंग वाले शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने आर्मेनिया में स्टीफन एवेग्यान मेमोरियल टूर्नामेंट जीत लिया है। राहुल, सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे क्रिकेट विश्व कप की। T20 क्रिकेट विश्व कप की कल से सुपर हिट मुकाबले खेले जाएंगे। तय हो चुका है कि कौन सी 8 टीमें अब रह गई हैं जो कि अब विश्व कप टीम का एक हिस्सा होंगी। और पहले मैच में कल अमरीका का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के साथ होगा, तो चर्चा क्यों ना अमरीका से शुरू की जाए। अगर हम अमरीका की बात करें, बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है, हालांकि उसमें कुछ खिलाड़ी इंडियंस भी हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खेला है, पाकिस्तान को जिस तरह से हराया है, और यूं कहें कि जब भारत के साथ मैच हुआ तो शुरू में लग रहा था कि शायद कुछ ओवर में भारत भी चकनाचूर होता नजर आ रहा है।
ये बहुत ही मैं कहूंगा इम्प्रेसिव इनका परफॉर्मेंस रहा है। खास जब देखें कि ये 99% या 100% ही बोले पार्ट टाइम प्लेयर हैं, हफ्ते में 5 दिन नौकरी करते हैं, फिर 2 दिन क्रिकेट खेलते हैं, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फुल टाइम प्रोफेशनल टीम जैसे पाकिस्तान जैसी टीम को हराना और एक और फुल टाइम प्रोफेशनल टीम भारत जैसी टीम को, जहां विश्व का सबसे बड़ा आईपीएल 2020 लीग चलता है, उस टीम को कम से कम शुरुआत में थोड़ा सा हिलाना ये कोई कम बात नहीं है। और मैं कहता हूं कि मेक द गेम ग्लोबल जो आईसीसी और हर स्पोर्ट कहना चाहती है, मेरे ख्याल से ये एक सबूत है कि अमरीका जहां पे एक ब्रेक थ्रू करना बहुत मुश्किल हुआ इतने सालों से। हालांकि सबसे पुराना अगर याद करें तो सबसे पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच
अमेरिका में हुई बात है।
राहुल, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा आगे एक स्टेप है अमेरिका के लिए।
राहुल, इस पर चर्चा हम थोड़ी जारी रखेंगे, लेकिन बहुत संक्षेप में कल अमेरिका क्या परफॉर्म करेगा दक्षिण अफ्रीका के साथ?
देखिए, उनका तो सबसे ज्यादा अभी तक डिपेंडेंस रहा है उनका, जो मैं कहूंगा ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, वन दैट गॉट अवे, जो जिसको इंडिया खेलना था, इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, उसके बाद उसको चांस ही नहीं मिला, रणजी ट्रॉफी में भी मौका नहीं मिला, वो चला गया यूएसए। अब यूएसए के लिए कितना बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है, और नेत्र वालकर की जो परफॉर्मेंस होगी शुरुआत में उसके ऊपर काफी डिपेंड करेगा। और उसके बाद 2-3 और भारतीय खिलाड़ी हैं जो इनके सलामी बल्लेबाज है, फिर मिडिल ऑर्डर है, प्लस कपल ऑफ अदर्स, सो इट बी गुड। देखिए, साउथ अफ्रीका नो, इसमें कोई दो राय नहीं है, साउथ अफ्रीका 99% मौका है उनका जीतने का,
लेकिन उलट फेर
कहां तक ये ले जा सकते हैं
जी,
ये भूल गया।
गुणा गणित कैसा रहेगा सुपर 8 का, भारत क्या कुछ करेगा, आइए सुनते हैं दीपाली की इस रिपोर्ट में।
सुपर 8 के सभी मैच वेस्टइंडीज में खेले जाएंगे। हर ग्रुप की 2 शीर्ष टीमें सेमीफाइनल के लिए चुनी जाएंगी। सुपर 8 में सभी टीमों को 3 मैच खेलने होंगे और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 2 मैच जीतने होंगे। सेमीफाइनल की विजेता टीम बारबाडोस में 29 जून को फाइनल मुकाबला खेलेगी। पहले ग्रुप में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश है, जबकि दूसरे ग्रुप में अमरीका, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका है। भारत अपने 3 मैच अलग अलग वेन्यू पर खेलेगा। 20 जून को भारत का मुकाबला अफगानिस्तान के साथ बारबाडोस में होगा, जबकि 22 जून को एंटीगुआ में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। भारत एंटीगुआ में पहली बार खेलेगा। 24 जून को भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ सेंट लूसिया में होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया ने 31 में से 19 T20 मैच जीते हैं। यही मुकाबला सुपर 8 में भारत के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग साबित हो सकता है। 24 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया सेंट लूसिया से भिड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया ने 31 में से 19 T20 जीते हैं। दीपाली पांडे, स्पोर्ट्स कैन।
राहुल, बारबाडोस, एंटीगुआ और सेंट लूसिया, ये वो मैदान है जहां पे भारतीय टीम लगातार खेलती आ रही है, और मुझे उम्मीद है कि उनको यहां के पिचों का भी कुछ हाल फिलहाल जो भी उनका मिजाज है वो जानते होंगे। हालांकि बहुत से खिलाड़ी नए हैं इसमें, आपको क्या लगता है अफगानिस्तान पहला मैच और अफगानिस्तान बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही है, खासकर अगर गेंदबाजों की बात करें।
लेकिन अनुभव के तौर पर अगर आप देखा जाए तो भारत को को हराना या ज्यादा ये करना काफी मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम टेकन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि T20 क्रिकेट ऐसा खेल है कि इसमें कुछ भी हो सकता है, ये तो हम मान के चलना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम पेपर देखें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें जो इस ग्रुप से जो आगे बढ़ने लायक या काबिल, सबसे ज्यादा काबिल नजर आती है, ये दो टीमें हैं। अफगानिस्तान जरूर पिछले 5 सालों में उन्होंने दुनिया विश्व क्रिकेट में उन्होंने जिस तरह से एक धमाका सा बना रखा है कि बड़े बड़े टीमों को हराया है, अच्छे प्रदर्शन हर वर्ल्ड कप का करीबन करीब पिछले 10-5-6 साल से हर वर्ल्ड कप में उनकी टीम आ पहुंची है और वहां भी अच्छा प्रदर्शन किया है। सो इट इज नेवर इजी टू टेक अफगानिस्तान फॉर ग्रांटेड। प्लस सबसे बड़ी बात उनका जिस जो दिल और जिगर और पैशन से जो खेलते हैं वो बहुत कम टीमों में है।
रोहित शर्मा बल्लेबाजी करेंगे, ओपनिंग बल्लेबाजी करेंगे और लगातार हम उनके साथ विराट कोहली को भी देख रहे हैं, तो क्या पहले 4 ओवर में ही हम राशिद को देख सकते हैं?
अब ये तो उनका कप्तान, उनके कप्तान और पिच के ऊपर डिपेंड करेगा किस तरह की पिच है। अब देखिए अभी तक तो हम जो मैचें हुई अमेरिका में बनाई हुई बाहर से बनी हुई पिच ड्रॉप इन पिचेस
थी,
अब यहां के दीज आर नेचुरल ग्राउंड, अब किस तरह की पिचेस तैयार हुई होंगी, मौसम इस टाइम में कैसा रहता है, अगर बारिश ज्यादा हुई है तो थोड़ा सा ग्रीन टॉप हो सकता है या स्पॉन्जी विकेट होगा, सर देर आर मेनी कंडीशन। लेकिन एट द सेम टाइम T20 में हम लोग कुछ ये जब ग्राउंड कंडीशन में कुछ ज्यादा करते हैं, टॉस कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है बट इट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर्स 11 और 11।
वेस्ट इंडीज की पिचों का अगर हम इतिहास देखें तो लगातार वहां पे बाउंसी पिचेस बना सकती हैं, तेज तर्रार पिचेस होती हैं, स्पिनर्स को कम जो है चांस मिलता है, लेकिन दोनों ही टीम में इस बार स्पिनर्स भी खेल रहे हैं और ज्यादातर अफगानिस्तान का दारोमदार तो स्पिन पे ज्यादा नजर आता है, तो क्या भारतीय खिलाड़ियों के लिए एडवांटेज होगा स्पिन को खेलना या कि बाकी के खिलाड़ी संभल करके? हालांकि अब तो बहुत लो स्कोर मैचेस भी हुए हैं,
लेकिन जब से ये टूर्नामेंट वेस्ट इंडीज में जा पहुंचा कम से कम हम लोग स्कोर तो आगे 150 के आसपास स्कोर देख रहे हैं, एक आधा मैच 200 तक भी पहुंचे हैं। तो उम्मीद रहेगी कि हाई स्कोरिंग, क्योंकि अल्टीमेटली T20 इट इज एंटरटेनमेंट और जब बड़े रन बनते हैं उसी में सबसे ज्यादा मजा आता है क्राउड को भी देखने के लिए, हम लोग को भी टीवी में देख रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से नजारा वही रहेगा जिस तरह से हमारी टीम खेल रही है या बाकी टीमें खेल रही है।
इस बीच खबर आ रही है कि पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने आज भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की क्रिकेट सलाहकार समिति के समक्ष इंटरव्यू दिया है और आज पहले दौर की चर्चा हुई है, तो क्या हम उम्मीद करें कि अब राहुल द्रविड़ का स्थान जो है गौतम गंभीर लेने वाले हैं और जिस तरह से उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को टूर्नामेंट जिताया, आईपीएल जिताया, तो क्या उसको लेके एक दिमाग में है कि क्रिकेट इंडिया के कि ये इनके कोच होने जरूर।
अब देखिए ये तो सिलेक्शन प्रोसेस अभी शॉर्टलिस्टिंग अभी शुरू हुआ है
जी,
अभी तक एक अकेला गौतम गंभीर का नाम निकला और कितने लोग हैं जिनका नाम अभी भी पॉसिबल है, जिनके साथ बातें होंगी, जिसके साथ बात आगे बढ़ेगी। अभी जो कैंडिडेट्स हैं ऑब्वियसली गौतम बिकॉज ऑफ आईपीएल ही इज ऑटोमेटिकली एक थोड़ा सा आगे अपना नाम उन्होंने डाल रखा हुआ है, प्लस जिस तरह उन्होंने उनकी जो चाल चलन है आईपीएल नाइट राइडर्स की टीम के साथ और जो फीडबैक जो हमने सुना टीवी पे सबके सामने कि जिस तरह से उनकी जो इंटरेक्शन होती है प्लेयर के साथ, जिस तरह कॉन्फिडेंस बनाते हैं, जिस तरह एक यूनिटी बनाते हैं टीम में, ये छोटी छोटी चीजें। लेकिन एट द सेम टाइम सिर्फ T20 के ऊपर आप डिसाइड नहीं कर सकते, यही टीम 50 ओवर क्रिकेट भी खेलेगी, यही टीम टेस्ट क्रिकेट भी खेलेगी, तो हर वर्जन में आपके डिमांड्स और अलग रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं, किस किस्म के अपनी सपोर्ट टीम लेके जाएंगे, जैसे राहुल ने एक अच्छी टीम बना रखी थी अपने आसपास, गौतम क्या बनाएंगे टीम, सो देयर आर मेनी फैक्टर्स, लॉन्ग वे टू गो।
भारत की उपकप्तान स्मृति मंधाना आज जारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम महिला एक दिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में 2 पायदान ऊपर चढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। बाएं हाथ की सलामी बल्लेबाज मंधाना ने घरेलू मैदान पर अपना पहला शतक जड़ते हुए 117 रन मैच की विजयी पारी खेली, तो 3 मैचों की श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका पर भारत की 143 रन की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। तो ये बातें थी स्पोर्ट्स स्कैन में क्रिकेट की। आइए अब आपको फिनलैंड लिए चलते हैं। ओलंपिक और विश्व चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आज फिनलैंड के तुर्कू में पावो नुरमी स्टेडियम में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में हिस्सा लेंगे। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
नीरज चोपड़ा पिछले महीने चेक गणराज्य में उस्रावा गोल्डन स्पाइक मीट में चोट के कारण नहीं खेल पाए थे। पेरिस में होने वाले ओलंपिक को देखते हुए उन्होंने गोल्डन स्पाइक में नहीं खेलने का फैसला लिया था। इससे पहले नीरज ने दोहा डायमंड लीग में अपने सीजन की शुरुआत 88.36 मीटर थ्रो के साथ की थी, जिसमें उन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की थी। इस टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा को जर्मनी के मैक्स डेलिंग से चुनौती मिलने की संभावना है, जो 90 मीटर से ज्यादा भाला फेंक कर इस सीजन में शीर्ष पर चल रहे हैं। इसी टूर्नामेंट में वर्ष 2022 नीरज चोपड़ा ने 89.30 मीटर की थ्रो के साथ उपविजेता रहे थे, जबकि ओलिवर हैलेंडर उस सीजन में विजेता रहे थे। नीरज ने अपने करियर में अभी तक 90 मीटर तक जैवलिन नहीं फेंका है। उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 89.94 मीटर है। चारू सक्सेना स्पोर्ट्स स्कैन।
राहुल, आज जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है, चुनौती भी देखने को मिल सकती है, और जैसा कि रिपोर्ट में हमने सुना 89.94, और वहीं जो जिनके साथ आज इनका मुकाबला है मैक्स डेहिंग, वो 90 मीटर तक फेंक चुके हैं। क्या लगता है आज भाला कहां तक जाएगा?
मेरे ख्याल से नीरज चोपड़ा थोड़ी समझदारी से भाला फेंकेंगे, क्योंकि जैसे हमने सुना इस सीजन में ऑलरेडी एक आधा टूर्नामेंट गेम उन्होंने छोड़ रखे हैं।
जी,
पेरिस देखिए, फोकस यहां रखना बहुत जरूरी है। हम लोग 90 मीटर अभी चाहते हैं और इसी इवेंट में जीत चाहते हैं, या दोबारा ओलंपिक में नीरज को स्वर्ण पदक जीतने का मौका दें। तो मेरे ख्याल से वो उनको भी अच्छी तरह पता है, वो इसलिए अपना वर्कलोड भी कम कर रखा है, और मेरे ख्याल से अभी तक इस सीजन में दो इवेंट ही खेली है, और इंक्लूडिंग भुवनेश्वर में आए थे फेडरेशन कप के लिए, तो अभी तक दो या तीन इवेंट खेले उन्होंने अपने आप को, क्योंकि उनका कुछ एक प्रॉब्लम था मस्कुलर हल्का सा, तो अपने आप को बचा के चल रहे हैं, और मकसद साफ साफ है कि पेरिस ही होगा, और मेरे ख्याल से फिनलैंड का एक इवेंट है, इसके बाद एक और इवेंट, दो इवेंट में खेलेंगे, उसके बाद पेरिस जाना है इनको, ये उनका शेड्यूल है जहां तक मुझे याद है।
और राहुल, छह बार ही भाला फेंकना होता है इस प्रतियोगिता में, या जो भी प्रतियोगिता होती है जैवलिन की, छह में से सिर्फ एक बार ही आपको 90 मीटर फेंकना है। क्या, अच्छा, मैक्स हेडिन की बात करते हैं, क्या वो 90 मीटर तक इस बार पहुंच पा सकते हैं?
देखिए, उसके बाद जब पहली बार उन्होंने मेरे ख्याल से फरवरी में फेंका था,
जी,
उसके बाद उनका बेस्ट 80-82 है, तो नॉर्मली ही इज रेंज इज नाउ 72-75, तो एक आधा बार ऐसे फ्रीक अकरेंस हो सकता है कि थोड़े विंड कंडीशन के वजह से, या हर चीज परफेक्ट हो, रन अप, रिदम, थ्रो, सब कुछ, लॉन्च एंगल, हर चीज अगर परफेक्ट हो तो हो सकता है, लेकिन उसको बार बार रिपीट। अब देखिए, वर्ल्ड और ओलंपिक चैंपियन अभी तक जिन्होंने 90 पहुंचे ही नहीं है, तो वो कोई बड़ी बात, कोई छोटी बात भी नहीं है, तो दोबारा ऐसे परफॉर्मेंस को रिपीट करना, और ये बहुत यंग लड़का है, 19 साल का है मेरे ख्याल से, जर्मनी की, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं,
जी,
तो उसका भी ये ग्रोथ और डेवलपमेंट भी बाकी है। नीरज का जो कॉम्पिटिशन है, वो जो एस्टेब्लिश्ड और बाकी एथलीट्स हैं, चेकोस्लोवाकिया के हैं और जर्मनी के भी एक दो और हैं, यूरोप के दो तीन और हैं, तो इनसे आएगा मेरे ख्याल से वन ऑफ, एक अगर ठीक है, इसे फ्रीक थिंग, इफ ही डज इट गुड,
यानी नीरज के गोल्डन थ्रो के लिए भी हमें इंतजार करना पड़ेगा।
देखिए, मैं तो चाहता हूं कि पेरिस में गोल्डन थ्रो, बाकी अब यहां में ब्रॉन्ज, सिल्वर या जीरो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पेरिस में अगर वो जो गोल्डन थ्रो कर सकते हैं, तब सब वही चीज सही होगी हम लोग।
और अब बात निशानेबाजी की। नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आज इस साल होने वाले पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय शॉटगन टीम की घोषणा कर दी है। पृथ्वीराज ने पुरुषों के ट्रैप में जगह बनाई है, जबकि राजेश्वरी कुमारी ने महिलाओं के ट्रैप में निशाना साधेगी। अनंतजीत सिंह नरूका भारत के एकमात्र पुरुष स्कीट निशानेबाज होंगे, जबकि रायजा ढिल्लो और महेश्वरी चौहान महिलाओं की स्कीट में हिस्सा लेंगी। पांच कोटा स्थान थे जो भारत ने हासिल कर लिए हैं, शॉटगन में पांचों खिलाड़ी हमारे जा रहे हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं, हालांकि निशानेबाजी में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं?
बाकी इवेंट्स में ऑलवेज बेटर चांस रहा है, ट्रैप एंड स्कीट में उतना भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन जैसे पहले बार से इस बार तैयारी बहुत अच्छी हुई है, बहुत पहले ही पेरिस के कोटा सील हो चुके थे, उसके बाद दो तीन सिलेक्शन हुई है टू फाइन ट्यून की कोटा लेके, असली कोटा को लेके कौन जाएगा, इसीलिए उन्होंने मेरे ख्याल से इतना लेट अनाउंस किया है टीम को, होपफुली दिस इज द बेस्ट टीम दैट विल गो।
चलते चलते हम अपने सुनने वालों को बता दें कि भारत दिसंबर 2025 में होने वाले पहले जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। वक्त बहुत तेजी से निकल गया है राहुल के साथ, अभी हमें बहुत सारी चर्चा करनी थी, लेकिन फिर जब हम स्पोर्ट्स स्कैन में राहुल के साथ मिलेंगे, हम बेहतरीन चर्चा करेंगे और कुछ नए ताजा आंकड़ों पर बात करेंगे। राहुल, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद
आज के इस अंक में बस इतना ही, मुझे नवीन को दें इजाजत, नमस्कार।